نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم ولا علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت ہی بڑا احسان, اس کا انعام, اس کا فضل کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے اور اس نے ہمیں وجود بخشا. چند لمحے کے لیے سوچئے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو کیا ہوتا, اور پھر ہم کو میں بدلیے. انسان کو لفظ میں, میری, مجھے بہت پیارا لگتا ہے کیونکہ اصل میں ہم میں ہی ہیں. میں کہتی ہوں میرا نام, میرا گھر, وہ میں کیا ہوں. اپنے وجود پہ اگر انسان غور کر کے دیکھے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ذات, یعنی جس کو آپ اپنا نفس کہتے ہیں نا, اس کو پڑھتا ہے. اور یہ نفس اتنی موٹی چیز ہے کہ انسان کو رولر کوسٹر کے نیچے سے بھی گزار دے نا تو یہ نفس نہیں مرتا. ہاں, صرف ایک ایسی چیز ہے جس کے بعد یہ نفس اس طریقے سے سمٹتا ہے, ایسے سمٹتا ہے کہ سکڑ کر بالکل ایک جونک سی بن جاتا ہے, اور پھر وہ انسان کو اپنی زندگی میں جو تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں اصل میں قرآن یہ کام کرتا ہے. سورۃ سواد کی اگر آیات کو ہم دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عزہ, مکہ والے عزہ کا شکار تھے, میں ہوں, ہم, ہمارا نام, ہمیں کچھ سمجھو, ہمارے لیے یہ, ہم وہ. قرآن نے آ کر ایک ایک کی عزت پہ پاؤں رکھا, اور پھر وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن انسان کو نچوڑتا ہے, ایسے نچوڑتا ہے, ایسے نچوڑتا ہے کہ اس کے بعد پھر انسان سمٹتا ہی جاتا ہے. تو آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی محفل میں آنے کا موقع دیا میرے سمیت, اور اس در و دیوار میں قرآن پورا ہوا ہے. آپ میں سے کس کا پورا ہوا, کس کا نہیں پورا ہوا, یہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن اس در و دیوار نے, اس زمین نے, ما قدموا وآثارہم, ان جگہوں نے وہ نقش ثبت کر لیے کہ جہاں قرآن گیا. یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کا کوئی حصہ یہاں مس کر دیا جائے. کلاس پوری ہوتی ہے, ایک آ کے بیٹھ جائے یا 100 آ کے بیٹھ جائیں, وہ سب بیٹھے ہی ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے یاد رکھیے گا کہ اس کتاب کو پانے کے بعد, اس کتاب سے تعلق جڑنے کے بعد جو سب سے بڑی تبدیلی انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے, اس کے اندر سینہ چلی جاتی ہے. قرآن سیکھنے کا ایک پروسیس ہے. جیسے اگر آپ بیج زمین میں ڈالیے, بیج زمین میں ڈالے بغیر جڑ نکل سکتی ہے. چند باتیں لکھیے, آپ ایک ایک لفظ لکھیے, سننے سے بات نہیں بنتی. سننے والے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے, وہ لسنرز ہوتے ہیں, اور آپ نے قرآن کو اپنے اندر جذب کرنا ہے. چند سوال آپ سے بھی پوچھتی ہوں اور خود سے بھی, کیا بیج کو زمین میں ڈالے بغیر آپ اس میں سے کوئی پودا نکال سکتے ہیں؟ شیشے کے خوبصورت سے جار میں سجا دیجئے آپ بیج کو, بڑی پیاری سی روئی کے اندر رکھ دیجئے آپ اس کو, کیا اس میں سے فصل اگے گی؟ وہ گندم کا بیج ہو, چاول کا ہو, یا پھر وہ آم کی گٹھلی ہی کیوں نہ ہو. مراد یہ کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا, کیا یہ سب پروسیس فطرت کے قبول کیے بغیر آپ فصل لے سکتے ہیں؟ بس آج اپنے ذہن میں یہاں یہی بات رکھیے کہ قرآن فہمی کا یہ سفر, قرآن پاک کے ساتھ تعلق کا یہ سفر اصل میں روٹ ٹو فروٹ ہے. روٹ سے پہلے بیج ہوتا ہے, سیڈ. آپ میں ماشاءاللہ اس سرسبز و شاداب ملک میں ہیں, راستوں میں ہی آپ کو اتنی فصلیں دکھیں گی, اتنا سبزہ دکھے گا, بہت کچھ دکھے گا. کسی کسان, کسی مالی, کسی فارمر سے جا کر پوچھو کہ زمین میں بیج چھپائے بغیر کبھی تم نے فصل لی ہے, کوئی ایسا سبزہ, کوئی ایسا پھل ہے؟ کوئی بھی, دیکھیے سبزیاں میں سبزیاں بھی ہیں, پھل بھی ہیں, اناج بھی ہیں, یہ تین چیزیں نا. پھر آگے ان کی قسمیں, کچھ چیزیں چھوٹے چھوٹے پودوں پہ اگتی ہیں, کچھ بیلوں پہ اگتی ہیں, کچھ درختوں پہ اگتی ہیں, ایسی ہے نا. نوٹ کر لیں, آپ کو بھی پتا ہے کدو بیل پہ لگتا ہے, کریلوں کی بیل ہوتی ہے, ایسی ہے نا. اور اسی طرح سے دھنیا, پودینہ, ساگ, اس کے تنے ہم کھاتے ہیں, مم بقلیہا, हाँ, फिर इसी तरह आलू, मूली, गाजर और शलजम, इनकी जड़ें खाते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से सेब, अमरूद, अनार, इसके दरख्त के ऊपर लटकता हुआ फल खाते हैं। एक ही प्रोसेस जो फितरत ने दिया है, कितनी डाइवर्सिटी है। कुछ फसल 6 माह में आ जाती, कुछ 3 माह में आ जाती, कुछ फसलें साल में 2 बार आती और कुछ एवरग्रीन है। लेकिन एक कॉमन चीज़ लिख ले, फितरत की ये पुकार है। बेल हो, दरख्त हो, बूटियाँ हो, सब्ज़ा हो, उसका नुक्ते आगाज़ बीज को ज़मीन में छुपाने से होता है। इस पे आपका ज़हन खुला। इसके साइमल्टेनियसली इंसान का वजूद लिखिए। गोरा, काला, यानी हबशी, अरब, अजम, अमीर के घर का बच्चा, गरीब के घर का बच्चा, बाद में वो शेक्सपियर बनने वाला बच्चा, वो मौलाना सुदेश बनने वाला बच्चा, और किसी शराब खाने में जाकर सर धुनने वाला कोई शराबी, सब का नुक्ते आगाज एक ही है। ऐसे ही है ना। ये कभी नहीं हुआ कि शेक्सपियर दरख्त से उतरा था और नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो किसी गार में से निकला। नबी हो, वली हो, पैगंबर हो, कुतुब हो, लोगों के मुताबिक कोई गौस हो, सब का दुनिया में आने का प्रोसेस एक ही है, दैट इज़ फितरा। ये दो मिसालें जहन में आ गई, एक और ले लें, हैं तो बहुत सारी। लेकिन सिर्फ अपने आप को ये शऊर दिलाने के लिए कि फितरत के असूल को अपनाए बगैर प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि हम यहाँ कुरान पढ़ने आए हैं, हम कुरान पढ़ेंगे। मैं इसको और रंग में लेती हूँ, माजरत के साथ। मैं सोचती हूँ कि आप यहाँ प्रोडक्टिव बनने आए, प्रोडक्टिविटी। आप अकेले थे, आपको अपनी फिक्रें थी, आपको अपने गम थे, और वो यही थी ना, बचपन में खाने का गम होता है, बच्चे को रोता है तो पेट में दर्द है, वो गम है। ज़रा से आप बड़े हुए तो आपको स्कूल कॉलेज जाने का गम पड़ गया, और इसी तरह की बातें, राइट? ज़ात का ही गम था। फिर बंदा बड़ा होता है तो अपनी शादी का गम, फिर और बड़ा होता है तो बच्चे, फिर बच्चों के स्कूल का गम, फिर उसके बाद बच्चों की शादियों के गम पड़ जाते हैं। ये सब कुछ जो होता है, इन सब में आप अपनी ज़ात के कैसे दायरे में जकड़े होते हैं कि अमीर गरीब, मजदूर फकीर, सेठ, सब एक ही घन चक्कर का शिकार होते हैं। कुरान आपको अपनी ज़ात से ऊपर उठाता है। आप कहते हैं कि मैं सिर्फ अपने लिए जीऊँ, मैं सिर्फ पैसे के लिए जीऊँ, मैं सिर्फ अपने इन 30, 40, 50, 60 साल की ज़िंदगी की फ़िक्र में घुलूँ। ये नहीं हो सकता। आप क्या चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई कैसा काम हो जाए आपसे कि इमाम बुखारी की तरह आपका नाम अमर तो नहीं कहती मैं, अमर तो सिर्फ़ अल्लाह ही का नाम है, क्योंकि कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। लेकिन आज इमाम बुखारी का लफ्ज़ सुनते ही आपके जहन में कोई पुराने दौर की शख्सियत आती है, कोई उनका तस्करा सुनने करने के लिए कोई पुरानी फिल्में देखनी पड़ती हैं, कोई पुराने डॉक्यूमेंट्स देखने सुनने पड़ते, नहीं, आज भी जिंदा है। इल्म की दुनिया का एक शाहकार नाम इमाम बुखारी, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला। क्या कोई बड़ा अननोन नाम है? अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्या ये कोई नया नाम है? बिल्कुल भी नहीं। बस समझ लीजिए, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया कि जिसके बाद उनकी ज़िंदगियां कारामद हो गई, वो लोग थे, लिख के रखिएगा, जो फितरत की इसी प्रोसेस से गुजरे जो मैंने अभी आपको दो मिसालों में दिया। जब तक बीज को मट्टी में नहीं डालेंगे वो फल नहीं देगा। प्रोसेस, तदरीज, स्टेप टू स्टेप। अलम तरा कैफ दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यिबतन कशजरतिन तय्यिबा असलुहा साबितुन व फरूहा फिस समाई तूतियु कुलहा कुल्लहीन। ये फितरत का असूल है। अल्लाह सुबहाना ताला ने आपको मुझे कायनात से सबक सीखना सिखा दिया कि तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारे दुनिया से जाने के बाद भी तुम्हारा फल रहे, जैसे आज इमाम बुखारी का फल बाकी है। शायद जब इमाम बुखारी अपनी ज़िंदगी में पढ़ाते होंगे तो चंद सौ लोग उनके सामने होते होंगे, हालांकि उस दौर में इल्म की इतनी चाहत थी कि एक इल्म वाले की किसी शहर में आमद सुन के गलियां जो थी वो लोगों से भर जाती थी। माइक सिस्टम्स नहीं थे, नेट मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, बड़े बड़े मजमे होते थे और अगली 10-12 लाइनों वाले अपने उस्ताद की बात सुनते, फिर 10 लाइनों में से आखिर में से एक उठता, फिर वही बात उधर मुंह करके अगली 10 लाइनों वालों को सुनाता, फिर वो सुनते फिर उन 10 में से एक और। जैसे आज भी बड़े मजमों में मुकब्बर होते हैं इमाम की आवाज़ आगे से आगे पहुँचाने वाले, इस तरीके से बात जाती थी कि बाज़ दफ़ा उस्ताद की बोली हुई बात वो मजमे के आखिर तक जाने में आधा आधा घंटा लग जाता था। 95,000 लोगों तक का मजमा इमाम बुखारी के मजमों में मिलता है। इतनी चाहत थी, खुले मैदान भर जाते थे कभी वो इल्म के लिए आते। ये तो इल्म का शौक था, आज तो हम सहल हो गए, हम तो ऐशकोश हो गए। नरम गाड़ियों गरम गाड़ियों में बैठने वाले, नरम गरम कपड़े पहनने वाले, फिर भी हमारे पास क्वेश्चंस ही बड़े हैं। दूरियां बहुत हैं, फासले बहुत हैं, हालात साजगार नहीं, पैसा बड़ा लगता है। आज आपको चंद लोगों की चंद बातें मिलेंगी, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि कैसे वो इल्म के ये समंदर पी गए। फितरत के तरीके पे थे, रूट टू फ्रूट पे थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि इल्म और सब्र दो साथ साथ चीज़ें हैं। सूरत कहफ हर जुमे मुझे और आपको पढ़ाई जाती है ना, इन नकलन दस्तती यमाई सब्रा। एक उस्ताद का कमेंट था एक इल्म की तरफ आने वाले शागिर्द के लिए, और वो कौन थे? मूसा अलैहिस्सलाम, जो अपने वक्त के बेहतरीन इंसान, तौरात उन पर आ चुकी। और एक सवाल के जवाब में जब किसी ने पूछा कि ये बताओ कि दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कौन है, उन्होंने कोई बड़ाई की बातें नहीं की कि मैं, और अपने कंधे थपथपाते, सिर्फ ये सोच के कि मेरे ऊपर तौरात उतरी है जो इल्हामी किताब है। और आप देखते हैं कि तौरात पहली किताब थी, जबूर भी उसके बाद, इंजील भी उसके बाद, कुरान तो खैर उसके बाद था। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि वो मैं हूँ। बस अल्लाह को ये जुमला अच्छा ना लगा, कहा कि मूसा आप अगर ये कह देते ना कि वल्लाहु आलम मेरे से भी कोई बड़ा होगा तो ज़्यादा अच्छा जवाब होता। खैर, कहा अच्छा मेरे से ज़्यादा इल्म है किसी को तो बताइए जल्दी से, मैं उससे फैसला। कहा फलां जगह पे एक शख्स है जहाँ जाके तुम उससे इल्म ले सकते हो, उस पर वो पूरा किस्सा है जो आप सूरत कहफ में पढ़ते हैं। उसमें आपको मूसा अलैहिस्सलाम की कमिटमेंट दिखती है, ला नब्रहु मैं नहीं टलूंगा, अमदिया हुकुबा मुद्दतों यानी सदियों चलता रहूंगा, यानी मेरे अंदर कमिटमेंट इतनी है कि मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। और उस साथ ने 3 बार उनको एक वार्निंग दी कि इन्ना कलन तस्तिया माइया सबरा। मुझसे सोच लीजिए, एक होती है बैरन लैंड जहाँ पहले कुछ नहीं उगा हुआ, याद रखिए कि उधर फसल उगानी बहुत आसान होती है, ज़रा सा हल डालें, कुछ खाद डालें, बीज डाल के इंतज़ार कीजिए। लेकिन एक ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पहले से कुछ उगा होता है, जड़ी बूटियाँ, घास फूस, दरख्त, झाड़, वहाँ बीज डालना बहुत मुश्किल है। कभी आपने ऐसी जगहों पे किसी को कभी काम करते देखा हो ना कि जहाँ पहले बड़ी झाड़ फूंक है, तो यकीन करें पसीने आ जाते हैं, क्योंकि जो पहले से मौजूद चीज़ें होती हैं ना उनको खुरचने में बहुत मुश्किल लगता है। इसको वैसे भी समझिए कि खाली प्लॉट पे घर बनाना, एक मदरसा बनाना कोई मुश्किल नहीं है। नक्शा लीजिए और बनाइए और पैसा हाथ में रखिए तो मज़े से अपनी पसंद का घर बना लीजिए। बने हुए घर को रेनोवेट करना बड़ा मुश्किल है, बाद उस पर ज़्यादा पैसा लगता है, फिर भी वो चीज़ नहीं बनती। हर बात पे ये कहना पड़ता है कि ये पहले से बना हुआ था। कपड़ा आप अनसिला पीस देकर सिलवा लीजिए, जैसा कहेंगे सिल जाएगा। सिले हुए कपड़े को ज़रा सा आप कीच या चेंज कराइए, मुश्किल होगा। इल्म की भी यही शान है, जब आप बचपन से एक चीज़ को लेकर चलते हैं, जैसे बचपन में हम स्कूल में भेजे गए, हमने मैट्रिक तक एक ही स्कूल में किया, फिर वहाँ से निकले तो कॉलेज में गए, फिर वहाँ से एफ़ए किया, फिर बीए, जो भी किया, जब आप अपनी जगह पे जुड़े रहे तो आज आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह एफ़ए की भी डिग्री होगी, मैट्रिक की भी होगी, बीए की भी होगी और अगली भी होंगी। ऐसी ना, क्या आपको कभी डिग्री मिल सकती थी? अगर आप पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक कॉलेज या स्कूल में दाखिला ना लेते, बस ऐसे ही घर में किताबें मंगा के पढ़ते रहते, मुमकिन था? यानी आप कोर्स की बुक्स, सिलेबस की बुक्स जो हैं वो ले लेते किसी बुक शॉप से, और किसी एक टीचर से फ़ायदा भी उठा लेते कि अच्छा ज़रा मुझे थोड़ी सी ट्यूशन पढ़ा देना, वो भी कर लेते। लेकिन क्या आप हकीकत में आप एफ़ए, बीए, एमए या उससे भी ऊपर कुछ चीज़ें करके आज किसी कॉलेज में लेक्चरर लगने के काबिल होते? इल्म तो आ जाता आपको, किताबें पढ़ने से इल्म आ जाता, तरबियत नहीं होती। एक पौधा जो एक बाग में एक माली की कस्टडी में लगता है ना, बड़ा खूबसूरत होता है। उसको देखें तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि माली उसको देख रहा होता है, उसकी टेक केयर कर रहा है, उसके अंदर से जड़ी बूटियों को निकाल रहा होता है। लेकिन एक पौधा आप सड़क के किनारे खुदरो उगा हुआ देखेंगे, फर्क पता क्या है? आने जाने वालों के कपड़े फाड़ेगा, क्योंकि उसकी ट्रिमिंग नहीं हुई, उसको कैंची नहीं लगी। उस्ताद के हाथ लगे बगैर बंदा प्रोडक्टिव नहीं होता। अफसोस की बात यह कि आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। इल्म हासिल करना भी उतना ही आसान हो गया जैसे गुनाह करना आसान हो गया। हमारे बड़े फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर जाते थे, आज फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर जाने की कोई ज़रूरत है? कतई नहीं। पहले लोग पीटीवी की नशरियात का इंतज़ार करते थे कि कब कौन सा प्रोग्राम आए, और हम सुने खबरें सुनने के लिए लोग बैठे जुमाइयाँ लेते रहते थे, 9 बजेंगे तो खबरें सुनेंगे। इसी तरह ड्रामा देखने वाले 8 बजे तक बैठते थे। बच्चों के प्रोग्रामों का अपना वक्त होता था। जिस तरह आज के दौर में गुनाह आसान है, आप एक नहीं 100 गाने का एल्बम अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। पहले एक एक गाने के लिए कैसेटें सीडियां लेनी बंद करनी खरीदनी, एक एक सीडी भी उस दौर में 50-60 रुपए की होती थी। आज आप पूरे पूरे फोल्डर डाउनलोड कर लीजिए, गानों के एल्बम कर लीजिए। एक कारी की किरत मुझे अच्छी तरह याद है। हमारे पास बुक स्टोर था एक ह्यूस्टन में, तो उस दौर में कुरान की तिलावत सुनने के लिए लोग मोस्टली कारी शाकर कासमी का सेट मांगते थे। 3 डब्बों में आता था, हम पाकिस्तान से मंगवा कर ह्यूस्टन में बेचते थे। आप यकीन करें कि वो वजनी इतना होता था, और मुझे याद है कि $2 की भी अगर कैसेट करे तो 10-10-10-30 कैसेटें थी उसकी। 60 वो हो गए, फिर ऊपर शिपिंग खर्चे और उसकी ये सारी चीज़ें जो थी, उसको अगर आप देखें तो अच्छा खासा $100 के करीब मुझे याद आ रहा है कि सेट मिलता था, आज से कोई 10-15 साल पीछे। लेकिन आज आप मुझसे नाम पूछिए कि फलां कारी की कैसेट सीडी रिकॉर्डिंग उनकी मैं कैसे सुनूं, आपको मैं सिर्फ एक ऐप बता दूं, 30-40-50 मुख्तलिफ कारियों की, पूरे पूरे कुरान उसमें मौजूद है। सिर्फ एक यूट्यूब का लिंक पूरे कुरान की तिलावत है किसी एक कारी का, 25-30 घंटे चलता है। क्या मुश्किल है? लेकिन जितना इल्म आम हुआ उतना नफ्स सहल हो गया। इल्म बहुत मुश्किल से आता है, इन्फॉर्मेशंस मिल जाती हैं। जब हम इधर उधर से चीज़ें कलेक्ट करते हैं ना, तो हमारी मिसाल उस एक कबाड़िए की दुकान की तरह बन जाती है जिसके पास हर कुछ है लेकिन 2-3 चीज़ें आपस में नहीं मिलती। तो इल्म के लिए एक रब्त की ज़रूरत होती है, और जब आप इस कुरान को कतरा 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 करके अपने दिल में डालते हैं ना, तो आपको महसूस होता है कि ये है बड़ी मज़ेदार चीज़। दूसरे को लगता है आप बड़ी मुश्किल में हैं, आपकी ज़िंदगी कितनी कठिन हो गई, हाय आपको आना पड़ रहा है, फिर आपको बैठना पड़ रहा है, फिर आपको बीच में ब्रेक जब मिलनी है उसके बगैर आपने उठना कोई नहीं, फिर आपका टेस्ट भी हफ्ते में एक आध दफ़ा होना है, फिर पूरे पारे के बाद असाइनमेंट भी होनी है। बज़ाहर अकल में नहीं आता, हम ये काम ऐसे कर लेंगे, हम ये काम ऐसे कर लेंगे, नुकसान क्या होगा? नुकसान वही होगा जो आज हो रहा है। महंगी चीज़ बहुत नायाब होती है। किसी भी शहर में आज भी इस दौर में 10,000 रुपये का एक सर्दियों का सूट पहनने वाले आपके शहर में तो बहुत सारे होंगे। वन ऑफ द रिचेस्ट सिटी इन पाकिस्तानी सियालकोट, मैं गलत कहूँ तो आप मेरा हाथ रोक सकते हैं। सारी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आपके शहर से होती है। अमीर लोगों का गरीब शहर है ये, बिलीव मी। करोड़पति तो लफ्ज़ ही बहुत छोटा है, अरबपति लोगों का ये शहर है। लेकिन कुछ लोग मादी तौर पे बहुत अमीर होते हैं, रूहानी तौर पे बहुत गरीब होते हैं। चंद दिन पहले हमारी एक सिटिंग थी कासम अली शाह साहब के साथ, मेरे मुंह से ये जुमला निकल गया जो मैंने अभी बोला है बदल के थोड़ा सा। मैंने कहा कि कुछ लोग रूहानी तौर पे बड़े गरीब होते हैं, जो अपने दीन या इल्म या इस्लाम के लिए 1 रुपया नहीं लगाना चाहते, और उनकी शादियों में आप कभी इजहार तो देखें पैसे का और उनकी ज़िंदगी देखें। उन्होंने कहा बाजी ठहर जाए मैं लिख लूँ, फिर उन्होंने 2-3 दफ़ा दोहराया। क्या बात है, मैंने तो कभी सोचे नहीं कोई लोग रूहानी तौर पे गरीब हुआ है जिसको इल्म का शौक नहीं है। तो फिर उसके रास्ते की कुर्बानी नहीं देनी, उस पर वक्त नहीं लगाना, उस पर माल नहीं लगाना। वो कहते हैं ना कि लगती है इसमें मेहनत ज़्यादा, ये रूहानी गरीब है। इसके बरक्स वो लोग जिनको अल्लाह ने रूहानी तौर पे अरबपति कर दिया, वो दीन का बड़े से बड़ा तकाजा, बड़े से बड़ी बात सुन के क्या कहते हैं, कोई बात नहीं हो जाएगा, होना किधर से है, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। वो कहते वो ऊपर है, लिल्लाहि माफ़ी समावाती व माफ़ी अर्ज़, यानी वो जान लगाने का वक्त आ जाए, वो माल लगाने का वक्त आ जाए, वो अपने जज्बात का वक्त आ जाए, कुर्बानियाँ दीन कुर्बानी के बगैर नहीं फैलता। जितना ज़्यादा आप अपने इस दीन को सस्ता करते जाएंगे, जितना इसको सेक्रीफाइस फ्री करेंगे, उतनी इसके लिए आपकी ज़िंदगी में अहमियत कम होगी। कोई कीमती सेट हो तो उसको आज भी लोग लॉकर में रखते हैं, और सस्ती ज्वेलरी अपने शोकेसों पे रखी होती है, वो वैसे ही ख़राब हो रही होती है। इल्म को जितना कीमती समझेंगे, जितना इसको नायाब समझेंगे, आप इसकी केयर करेंगे, और इस इल्म के लिए जो इस रोलर कोस्टर से गुज़र जाते हैं लोग, यकीन कीजिए कि उनकी ज़िंदगियाँ संवर जाती हैं। कभी कभी हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जमा होने का नाम इल्म समझते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दे देती हूँ। बेल, बेल तो पता है ना ज़मीन पे उगती हैं, एक है बेल का उगना और एक है दरख्त का उगना। फ़र्क क्या पता है आपको? सबको ही पता होगा, कोई नई चीज़ तो नहीं मैंने पूछ ली। दरख्त का काम क्या है? कि बीज डाले दादा और फल खाए पोता। जैसे आम का दरख्त, कहते हैं कि एक पूरी जनरेशन बीच से निकल जाती है तो अगली जनरेशन तक फल आता है, ऐसे ही है ना? और सब्र करना पड़ता है। आपने अपना अच्छा कीमती आम, उसकी गुठली भी अंदर ज़मीन में डाल दी, जो आप खा लेते तो आपको मज़ा आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, सब्र के नतीजे में पहले नीचे जड़ें पक्की हुई, वो अंदर ज़मीन में हुआ। और आपको तो दरख्त का साया जहाँ तक जाता है ना, ऊपर से आप देखें उसका झाड़, जहाँ तक उसका साया पड़ता, कहते हैं अंदर उतनी ही दरख्त की जड़ें होती हैं। नॉर्वे में अमूमन पुराने दरख्तों की जो जड़ें हैं ना, ऐसे से बाहर आने लगती हैं, जैसे बूढ़े लोगों के हाथों की वेंस नहीं उभर आती, तो आप जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं ना, तो वो पहाड़ तो सीधा होता है, लेकिन उसके अंदर दरख्तों की पूरी पूरी लकड़ियाँ सी नीचे से बनी होती है, जो ज़मीन से निकल आती हैं, क्योंकि जड़ को तो जगह चाहिए और अंदर पत्थर है वो जगह दे नहीं रहा, तो वो फिर जड़ ऊपर आ जाती है। बड़ी एहतियात से चलना पड़ता है ऐसी जगहों पे, ठोकर लगने का डर होता है, क्योंकि उसने ज़मीन में अपने आप को पुख्ता किया होता है। लेकिन एक दफ़ा एक दरख्त लग जाए, उसको उखाड़ने के लिए धक्का भी नहीं लगता, कि धक्का लगाएं तो वो तना गिर जाए। लगा के बाहर देखिए किसी सड़क के किनारे दरख्त को, आपकी कमर टूट जाएगी, दरख्त नहीं हिलेगा, आरा चलाना पड़ता है, उसको चिरवाएंगे लकड़ियों के किसी आरे पे से लाकर, कुछ फिर कहीं गिरेगा। अटलांटा इंस्टीट्यूट जब लिया तो उसके बाहर खुली जगह जो इतना उसमें दरख्त है, तो जब हमें उसका पोजेशन मिला और उसकी चीज़ें सेटल हो रही थी, तो सिटी की तरफ से एक रिक्वेस्ट थी कि ये जो आपके बाहर 10-12 दरख्त हैं ना, ये कटवाने पड़ेंगे आपको। क्यों? कि मतलब उनका एक अपने क्राइटेरियन है कि ये गिर सकते हैं, हरिकेन आएगा तो हम सारे, क्योंकि वो सीधे की वजह ज़रा से ऐसे हो गए हुए हैं। खैर, आप कहते कि एक दरख्त कटवाने में कितने पैसे लगे हमारे, मुझे अगर गलत ना मैं बोल दूँ, पहले तो मुझे याद भी था क्योंकि चीख निकल गई कि इतने पैसे, 8 दरख्त कटवाने के शायद $5,000 दिए, और $1,000 आपके यहाँ के 2.5 लाख से ऊपर लगा लीजिए, यानी कोई 25-30 लाख रुपए देकर दरख्त कटा। क्यों भला? कि कटवाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ये तो बड़ा सस्ता मिल गया, वरना तो एक एक दरख्त का इतने हज़ार लेते हैं काटने के, उन्होंने मशीनें लानी है, फिर वो काम भी तो बड़े दिल से करते हैं ना, उन्होंने इर्द गिर्द बाड़ लगानी है, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, फिर उसको काटना, फिर उस दरख्त को डिस्पोज करना, फिर उस जगह को खाली करके साफ करना, उसकी अंदर से जड़ें खींचना, ये है दरख्त। लिख के रख लें, सब्र से इल्म लेंगे ना, जम के लेंगे ना, आप कब्र में चले जाएंगे, आपका सदका जारिया कोई उखेड़ नहीं सकेगा। आज इमाम बुखारी का सदका जारिया कोई उखेड़ नहीं सकता, उनको दुनिया से गए हुए मुद्दतें गुजर गईं, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख लीजिए कि वो आज भी हर मदरसे में सही बुखारी पढ़ाई जाती है, फिरके मसलक जमातें गिरोह बन गए, इमाम बुखारी का नाम नहीं को मिटा सका। इसके बरक्स चलिए तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। बेल अपने किसी भी माली से पूछिएगा, छोटे छोटे बीज आप ढेर करके लगाते हैं और उसके बाद आपको पता क्या होता है, दिनों में बढ़ती है। हम खुद नॉर्वे में देखते हैं जब स्प्रिंग आता है ना मार्च अप्रैल में, हर दिन की वॉक में हमें डिफरेंट माहौल दिखते हैं। इवन हमारे अपने घर का जो बाहर से आने का रास्ता है, सूखी सड़ी बेल होती है सर्दियों में, एक पत्ता नहीं, दिल करते इसको खेड़ने, रस्तों में आ रही है, लेकिन वो जड़ से जुड़ी रही है। फिर उस पे हल्की हल्की कोंपलें, छोटे 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 छोटे, ऐसे जैसे मोतियों की तरह की पुंगरती है। फिर 2 दिन बाद देखें तो उसमें हल्के हल्के से सब्बज से मुंह खोलते हुए खुश हैं। फिर अगले दिन देखें तो एक हफ्ते में वो पूरी बेल फूलों से भर जाती है। लेकिन याद रखिए, बेल जितनी जल्दी भरती है, आपके जहनों में अंगूर की बेल आनी चाहिए, कद्दू की। कोई जाके ना कैंची से सिर्फ उसका वो डंडल काट दे जो मेन जड़ से जुड़ा हुआ था, उसका सिर्फ एक छोटा सा डंडल जुड़ता है जड़ जमीन पे, बाकी सब ऊपर होता है। एक कैंची उस बेल का पूरा फैलाव खत्म करने के लिए काफी है। तो जिंदगी में जब भी काम करें, वो दीन के नाम पे करें, वो इल्म के नाम पे करें, वो कोई और भी अच्छा काम करें, सोशल वर्क, दरख्त वाला काम कीजिए, बेल वाला काम ना कीजिए। कभी कभी आपको लगता है हम बहुत कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे होते। लुक बिजी, डू नथिंग। देखिए, आपके पीछे बैग में एक कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है शायद। आज आप में से शायद कोई भी ना उधर से हो, आप उधर से हैं। आप प्रिंसिपल, टीचर, स्टूडेंट्स क्या हैं ये बताइए कि आपकी जो टीचर्स हैं, लेक्चरर बोलते हैं आप उसको, आप क्या पढ़ती हैं, अपने बारे में बताइए। कितने साल के आपका ये MPhil, उससे पीछे क्या किया? कितने साल लगे? उससे पीछे क्या किया? FA किया। कितने साल लगे? उसके पीछे क्या किया? कितने साल लगे? किसका मैथ अच्छा है आप में से? टोटल कितने हो गए हैं? 10। 18 साल बाद आप MPhil कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? ऐसी मैं आपसे इजरा कर रही हूँ, इसके बाद क्या होगा ये बताइए मुझे आप। शाबाश, मैं एंजॉय कर रही हूँ असल में इस सबको। जॉब मिलेगी ना, मर भी जाएंगे आप, बच्चों पैदा करके मर गई हैं, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे लंबी। देखिए, आपने MPhil किया, 18 साल से लगे कमो बेश, फिर आप जॉब करें, कितनी रुपये मिल जाती है MPhil करने वालों को? शुरू में कम मिलती होगी, वक्त के साथ एक्सपीरियंस, अंदाज़ा तो दें कितना होता है? 40,000। अच्छा, तो फिर वो जॉब करते रहे और जॉब छूट जाए बीच में कभी, तो देते हैं फिर वो पैसे, ख़त्म हो जाते हैं? और फिर कितने साल करते रहें तो फिर कभी रिटायरमेंट मिले के पेंशन मिलती है? 60, 18 से 60, 40 साल का खेता। सच बताइए, पहली बात तो ये कि ये मैट्रिक से लेके MPhil का सफ़र, इसके बाद इनको एक जॉब मिलेगी। आपकी जो इधर टीचर्स हैं, पढ़ के आई हैं ना, क्या कोई आपके इस डिग्री कॉलेज में टीचर बन सकता है? प्रिंसिपल तो दूर की बात, अगर उसने ये सारे स्टेप्स ना किए तो कुरान सीखने सिखाने वाला कैसे इन मरहलों के बगैर टीचर बन सकता है? ये है आज का हमारा ड्रॉबैक, कच्ची ईंट है, बेल है ये, आंख बंद कीजिए सब खत्म, बरकत नहीं उसके अंदर, तासीर नहीं। हमारे असलाफ ने इस चीज़ को समझ लिया था कि आपकी तो ये 40 साल जॉब के बाद पेंशन है ना, दीन के इल्म में अगर आप पढ़ने के दौरान भी फौत हो जाए ना, तो हदीस में आता है कि उसको शहादत का अजर है। उसके लिए हमारे पास वक्त ही नहीं, उसके लिए हमें कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी। और जो एक और एंगल से मेरी मदद करे, जब आप पढ़ती हैं तो पैसे लगते हैं, पाकिस्तान में फ्री तो नहीं है ना एजुकेशन, इवन बच्चों के स्कूलों की भी फीसें होती है ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी है ना, तो लगाया आपने कि नहीं लगाया? सिर्फ ये 40,000 रुपये की महीना तनख्वाह के शौक में ले रही है ना। आप में से किसको स्टडीज़ का इतना शौक है कि पढ़ने के शौक में पढ़ रहे हैं, आटे में नमक के बराबर? तो ज़रा सा सोचिए, जिस पढ़ने के बाद 40,000 रुपये महीने की पे लग जाए, और मशरूत है काम करते रहेंगे तो मिल जाएगी, शादी हो गई छूट गया, बच्चे पैदा हो गए उसमें खप गए, सब ज़ीरो। हाँ, उसका एक इल्म नॉलेज आपके बैक ऑफ द माइंड रहेगा, उसके लिए आपने 18 साल लगाए। और अगर सारी फीसें आज जाकर जमा करें, मैट्रिक से लेकर आगे तक जो भी खर्च हुआ, लाखों लग गए, इतनी बढ़ता है हमारे पास उसकी। और इकरा बिस्मि रब्बिक अल्लज़ी खलक, खलक अल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुक अल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम। दुनिया तो दुनिया, दुनिया से जाने के बाद भी इसका अजर नहीं जाता, इतनी शान है इस इल्म की कि इल्म के बारे में लिख लीजिए, आपको तक ईमान कबूल करने के बाद سب سے اہم چیز کیا ہے؟ توجہ رکھیں، ایمان قبول کر لیا. ایک نان مسلم آج کلمہ پڑھتا ہے، 20 سال کی عمر کی ایک لڑکی کلمہ پڑھتی ہیں، ابھی کلمہ پڑھا. آپ کو پتا ہے سب سے اہم چیز ان کے لیے اگلی کیا ہے؟ علم دین. اللہ کے نبی کے پاس جب کوئی آ کر مسلمان ہوتا تو پھر آپ اپنے ساتھیوں کو کہتے اب اس کو دین سکھاؤ. ظاہر طہارت، غسل، وضو کا علم ہے نا، نماز کیسے پڑھنی علم، اور اے بی سی ڈی. علم دین بہت قیمتی چیز ہے. یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ عمل الصالحات علم کے بعد ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ عمل صالح ہے کیا تو کریں گے کیسے؟ یعنی کوئی گائے کو پوجنا شروع ہو جائے یہ سوچ سے کہ میں بھگوان یعنی اللہ کی پوجا کر رہا ہوں، تو وہ بجائے خود ایک اس کے لیے اس کے خلاف نہ چیز پڑے گی. علم دین بہت مطلوب ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں جہاں نظر آئیں تمہیں لہو کے داغ یا تمہیں لہو کے چراغ، مسافران محبت ہمیں دعا دینا. کسی نے علم کی شان میں یہ شعر کہا تھا کہ یہ جو تمہیں ہم اللہ کی بات بتاتے ہیں نا، یا جو علم کے رستے پہ چلتے، اس میں لہو کے چراغ جلانے پڑتے ہیں. محبت بھی لازمی ہے. یہ سفر صبر اور محبت کے بغیر ہوتا ہی نہیں. ایک لفظ آپ پڑھتے ہیں اس کا اجر دیکھیے. آپ کہتے ہیں ہم واٹس ایپ پہ آگے پوسٹ لگا دیں گے، ایک چینل میں بناتی ہوں اور میں اس میں جا کر لگا دیتی ہوں. دیکھیے، یاد رکھیے، اللہ کو بھول نہیں لگتی. جب تک آپ کے اپنے اندر وزن نہیں ہے نا، آپ کی بات میں بھی وزن نہیں ہے. آج ہم نے ایک حدیث سنی کہ بلغنی ولو آیا، بات آگے پہنچا دو چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. لوگوں نے اسی کو پڑھ کے کیا سوچا ہے، ایک آیت پڑھی آگے پڑھانا شروع ہو جاؤ، جرم ہے. آج بھی پاکستان جیسے بڑے ریلیکسڈ کنٹری میں، یعنی ریلیکس میں اس کو کہتی ہوں رولز اینڈ ریگولیشنز میں، ہر جگہ لوگ اپنا کام نکلوا ہی لیتے ہیں. کیا کوئی بغیر میڈیکل کیے میڈیکل کی دکان کھول سکتا ہے؟ بتائیے، جعل سازی نہیں ہوگی؟ کہتے ہیں نا نیم حکیم خطرہ جان. وہ کتابیں پڑھ کے چار چھ پیراسیٹامول دوائیوں کے بارے میں ایک بک پڑھ لے یا سمٹمس پڑھ لے، وہ کہتے ہیں میں ڈاکٹر ہوں. اور اللہ معاف کرے، ہمارے ہاں شاید ایسے ہوں. باہر کی دنیا میں ہو نا، سیدھا عمر قید کہ تم نے لوگوں کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی ہے. جس جگہ کوئی ڈاکٹر خود نہیں بن سکتا، چلیے لائر، بغیر لا پڑھے کوئی ایڈوکیٹ کا آفس کھول کر بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. تو کیا اسی ملک میں بغیر سیکھے دین سکھانے والا کوئی بن سکتا ہے؟ بہت سارے بن جاتے ہیں. چار لوگ ہماری تعریف کرنے لگتے ہیں، یا کہہ رہے کہ چار پیسے ہمیں آنے لگتے ہیں، ہم تو اپنے ہی آپ پہ پھولے نہیں سماتے. آج یہاں بیٹھ کر میں اور آپ یہ نیت کریں کہ ہم نے اس علم کو لینے کے لیے صبر اور شکر کا نام نہیں چھوڑنا. ہم جو لیتے ہیں نا، جتنا لیتے ہیں اس سے زیادہ لینے کی ضرورت ہے، لیکن ترتیب، کسی کو دینے سے پہلے لیجئے، ورنہ ہوگا کیا، آپ صرف انڈے لیں گے. میں آپ کو مثال دیتی ہوں، صبح ناشتہ تو کیا ہی ہوگا نا. اب وہ ناشتہ جو کیا، وہ کھانا کھایا، انڈا لیا، چائے پی، وہ آپ کے جسم میں گیا نا، جذب ہوا، ہضم ہوا. اب وہ آپ کی باڈی میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے انٹسٹائن تک پہنچ چکا ہو، کچھ گھنٹوں کے اندر وہ آپ کے بلڈ میں شوگر بن کے جا چکا ہوگا. پھر آپ جو کھائیں گے، پئیں گے، کام کریں گے، وہ اس میں یوز ہوگا. یہ ہے فطرت کا طریقہ، پہلے کھانا ہضم کریں گے، پھر وہ ہضم شدہ کھانا آپ کو طاقت دے گا. اس کے برعکس کھانا کھایا اور ایک دم عجیب سا دل خراب ہوا اور وومٹ ہو گئی آدھے گھنٹے کے اندر، تو جسم سے کیا نکلے گا؟ وہی کھانا ہی نکلے گا نا. کیسی اسمیل ہوتی ہے وومٹ کی؟ کھٹی. کھانا ہضم نہ ہو، پیٹ میں بوجھ ہے، تھوڑی دیر بعد ایسے لگا کہ جیسے پتہ نہیں کیا، تو اسمیل آئے گی نا. ہے وہ بھی کھانا جو آپ سے فطری طریقے سے سٹول کے طور پہ نکلتا ہے، یورینیٹ ہوتا ہے، اور یہ بھی کھانا ہے. فرق کیا ہے؟ پہلا کھانا فطرت کے طریقے پہ ہے، پہلے آپ کی باڈی کا حصہ بنا، جذب ہوا، پھر نکلا. دوسرا ان نیچرل ہے، آپ نے خود نہیں اس کو ہضم کیا، آپ دوسروں کو دینے لگے. وہ علم جو آپ کے کردار میں نہ ڈھلے، جو آپ کو تقویٰ نہ دے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، جو آپ کے دل سے مال کی محبت نہ نکالے، جو آپ کے دل سے اس دنیا دنی کہ جس کی مثال اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر سے زیادہ نہیں ہے، اس کی چاہت نہ نکالے. وہ علم جس کو لینے یا دینے کے لیے آپ قربانی نہ سیکھے، وہ وومٹ ہے. آپ خود ابھی اس چکر سے نکلے ہی نہیں جس میں آپ دوسروں کو ڈالنا چاہتے ہیں. ابھی آپ کا وہ تزکیہ ہوا ہی نہیں جو آپ دوسروں کا کرنا چاہتے ہیں. آپ کی اپنی وہ تربیت ہوئی نہیں جو آپ چاہتے ہیں. اور سب سے بڑا خطرہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ تھوڑا سا دوسروں کو دینے لگ جائیں کچا پکا کھایا ہوا پکایا ہوا علم، اور کوئی تعریف کرنے لگ جائے آپ کی، اللہ کی بنا، پھر تو آپ کہتے ہیں دنیا میں میرے سے بڑا کوئی استاد ہی نہیں ہے. ہمارے اسلاف کی زندگی میں علم اتنا اہم تھا کہ مائیں پیٹ کے بچوں کے لیے دعائیں مانگتی تھی. چلیں، حضرت عیسیٰ کی نانی نے جو دعا مانگی تھی وہ تو آپ کو یاد ہوگی نا، انی نظرت لک ما فی بطنی محررہ، اے اللہ جو بچہ میرے پیٹ میں نا اس کو تیرے نام پہ آزاد کرتی ہوں، یعنی اس کو معاش کی ساری ذمہ داریوں سے آزاد کرتی ہوں. حضرت مریم کی ماں تھی ہے، اور اسی کی وجہ سے پھر عیسیٰ جیسا بیٹا پیدا ہوا. آپ کہتے ہیں چھوڑے جی، وہ تو نبی تھے، وہ تو اسلام سے پہلے کی باتیں، تو چھوڑ دیتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ، اب ان کی ماں پریگننٹ تھی کہ ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی، بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی بات. آپ جب دنیا میں آئے تو آپ کے باپ نہیں تھے. امام بخاری بھی ایسے ہی تھے. عموماً ایسی عورتیں بڑی انسیکیور ہو جاتی ہیں، ہائے ہمارے بچے کا کیا ہوگا، ہائے ہمارا بچہ یہ وہ دس اینڈ دیٹ. لیکن اس عورت نے نیت کی تھی، جو منت مانگی تھی کہ اللہ جو بچہ مجھے تو دے گا نا، میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے ڈیووٹ کر دوں گی، میں اس سے معاشی ذمہ داریاں نہیں رکھوں گی. اللہ کا حکم دیکھیے کہ امام بخاری پیدا ہوئے، دو طرح کی واقعات ہمیں ملتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں کہ بائی برتھ، اور کچھ کہتے ہیں کہ بالکل بیبی تھے، ابھی بلائنڈ ہو گئے، بینائی چلی گئی. اب ایک ماں کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے، اپنے بچے کے لیے اچھی نیت کی اور بچہ ہی آنکھوں سے محروم. روایت میں آتا، بلکہ ان کی زندگی کے حالات سنیں، صحیح بخاری جہاں پڑھائی شروع کے تین چار لیکچر صرف ان کی لائف پہ دیے تھے. ایک دن جائے نماز پہ کھڑی ہو کر یہ ماں اللہ سے جو راز و نیاز کرتی ہے نا، وہ پردہ کھل گیا، کتابوں میں لکھے گئے. کہتی ہیں کہ اللہ میں نے آپ سے ایک نعمت مانگی تھی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بچہ دے دیا، لیکن اے اللہ اس کی ایک چیز آپ کے پاس رہ گئی ہے. شکوہ نہیں، گلہ نہیں، محبت کا انداز ہے. اے اللہ میرے بچے کی آنکھیں تیرے پاس رہ گئیں، اب بتا کہ وہ حدیث کن آنکھوں سے دیکھے گا، کس سے پڑھے گا. روایات میں آتا ہے کہ ماں ابھی جائے نماز سے نہیں اٹھی، اللہ نے امام بخاری کو آنکھیں واپس کر دیں. یہ یقین کے سودے ہیں، جن کو شک ہے وہ یہیں سے پلٹ جائیں. یاد رکھیے کہ وسوسے شیطان دیتا ہے، وسوسوں کا وار صرف انہی لوگوں پہ چلتا ہے جن کے دل کچے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، وہ یہیں سے پلٹ جائے جس کو جان ہو پیاری. جن کے ارادے ہوں پختہ، منزلیں ان کو آواز دیتی ہیں. اللہ نے امام بخاری کو ایسی آنکھیں دیں کہ وہ چاند کی روشنی میں علم لیا کرتے اور دیا کرتے تھے. 18 سال کی عمر میں انہوں نے علم پورا کر لیا تھا، دینے والے بن گئے. وہ اپنی زندگی کی کہانیاں جو سناتے ہیں کہ علم کی طلب میں میرے کپڑے تک بک گئے، سفر کی صحبتوں میں خون کا پیشاب آنے لگ گیا. کیا وہ علم تھا؟ کیا وہ بے خودی تھی؟ آج آپ اور میں جس دنیا میں نا، یہاں تو مزے ہیں ہر چیز کے، ایزی گوئنگ ہے. دیکھیے وہی چیز زیادہ دیر رہتی ہے جس کو محنت کر کے بنایا جاتا ہے. سہج پکے سو میٹھا ہو، ایسی ہے نا. گھر بنانے کے دوران بہت پختہ بنا لیا جائے تو زیادہ دیر چلے گا، اور ہوا میں کھڑا کر دیا جائے ایک بلڈنگ کو چند ماہ میں، تو وہ 5-6 سال میں گر بھی جائے گی. آپ خود سے اپنے لیے ڈیسائیڈ کریں. اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ علم وہ عبادت ہے کہ جو کرتا بندہ تھوڑی دیر ہے لیکن اس کا اثر نسلوں تک جاتا ہے، تو بھی کیا بنے بتائیں، میں کیا بولوں گی. کنسسٹنٹ، زمین میں کھبیے، اپنے آپ کو اندر ڈالیے. میں چونکہ ٹریولنگ میں رہتی ہوں موسٹ آف دا ٹائم، تو مجھے مختلف جگہ پہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے. سب سے زیادہ خوشی مجھے اس وقت ہوتی ہے جب کوئی سسٹر ये कहती हैं कि मैं फलां दिन आपके लेक्चर में आई थी, फिर उस दिन आपने जो बात कही तो मुझे समझ आ गया और मैंने फलां आपका कोर्स ज्वाइन कर दिया, और उससे पहले मेरी नमाज भी छुटती थी, अब मेरी उससे बाद कोई नमाज नहीं छुटी। मुझे ऐसे लगता है कि ये है वो बंदी जो कल क़यामत के दिन शायद मेरे हक़ में गवाही दे दे और अल्लाह उसको कबूल कर ले। गवाहियाँ बने, गवाहियाँ बनाएं, दुनिया कमाने वाले बहुत हैं, दुनिया बनाने वाले भी बहुत हैं, बनती नहीं है। 3 दिन पहले हमारे अपने स्कूल में एक सिस्टर स्टूडेंट, उनकी डेथ हुई है, शायद 24 साल की, 25 की, आप सबको ही पता है। मतलब बच्ची पैदा हुई, फौत हो गई, और वो चंद दिन के बाद किसी दवा के रिएक्शन से मर गई। कल मुझे उसके बारे में जो लोगों ने कहा सुना, वो और उनकी निकाब में एक तस्वीर किसी ने दिखाई, तो मैं उसको देख के सोच रही थी, कोई सोच रहा है? अल्लाह ने करे आप में से कोई सोच सकता है कि 24 साल की उम्र में फौत हो जाएंगी, पहला ही बच्चा होगा और अब फौत हो जाएंगी, और उसकी गवाहियाँ कितनी हैं। तो कोई ऐसा काम करके जाएं कि जिसके बाद लोग हमें याद करें, बाकी सब ऊपर की बेल है। जिस दिन हमारी आंखें बंद होंगी ना, सब कुछ ख़त्म होगा। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत काम करते हैं, मरते ही ख़त्म, वोट कर गए तो काम बंद, वो जी उम्रे पे चले गए मस्जिद बंद। काम वो जो एक टीम में जाकर उसका हिस्सा बनकर इस तरीके से किया जाए कि एक का छक्का पूरी टीम की जीत है। जावेद मियांदाद ने एक छक्का लगाया था, पाकिस्तान को ट्रॉफी मिल गई, कप मिल गया। तो वो कभी कभी टीम में कोई एक बंदा एक खूबी वाला होता है, सारे एक जैसे नहीं होंगे, याद रखिए। एक बहुत बड़ी मुश्किल क्या होती है, हम चाहते हैं सब कुछ मैं करूं, दूसरी बात है सब कुछ मुझसे पूछ के किया जाए, तीसरी बात सब कुछ मेरी मर्जी से हो। याद रखिए, इसको वन मैन शो कहते हैं, इसको डिक्टेटरशिप कहते हैं, इसको अमरीयत कहते हैं। ये फितरत का असूल नहीं है। आपके जिस्म में ये क्या है, बोले आंख, ये क्या, ये क्या, ये क्या, ये सारे क्या एक ही काम कर रहे हैं। आंख बोले चुप कर जाओ, पीछे हो जाओ, मैं देख सकती हूँ ना, मैं सुन भी लूंगी, मैं बोल भी लूंगी। वो फिल्मों में गानों में तो कहते हैं फलां की आंखें बोलती हैं, पर हमने कोई नहीं सुनी कभी आंखें बोलती, समझे। आंख ने सिर्फ देखना है, कान ने सिर्फ सुनना है, जुबान ने सिर्फ बोलना है। अब आप एक गोल से चेहरे के ऊपर इन 3-4 मुख्तलिफ चीज़ों को लगा दें तो जिस्म बन गया। अच्छा, आंख को अलग कर दें जिस्म से तो देख सकती है, कानों को उठाकर काट के उधर रख दें तो सुनेंगे। दैट इज टीम, दैट इज़ द बेस्ट फॉर्म। अल्लाह के नबी के सहाबा में बहुत सारी खूबियाँ थी, लेकिन हर एक में हर खूबी नहीं थी। आप इमाम बुखारी का नाम तो बाद में रखिए, इमाम कह लीजिए कि अबू हुरैरा का नाम इल्मी में दान है ना। कभी किसी जंग का किस्सा पढ़े, आपको अबू हुरैरा का नाम नहीं मिलता, कभी तलवार नहीं पकड़ी, कभी तीर नहीं तोड़ा, नहीं। इसी तरह आप खालिद बिन वलीद का नाम लीजिए, कोई इल्मी महफिल हो कभी उसमें उनका तज़किरा ही नहीं। अगर अबू बकर सिद्दीक में नरमी थी, हलीमी थी, तो उमर फारूक में दीन पे जमना था। ये थी नर्सरी ऑफ हीरोज। तो फितरत के तरीके पे रहेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी बहार आएगी। सही तौर पे रखिए, सही मामले पे अपने आप को लेकर चलिए, और माँ, आज की बच्ची कल की माँ, एक जुमला लिख लें कि तेरी गोद में पलती है तकदीर उम्म। एक औरत एक लड़की को पढ़ाना, उसका पढ़ना खुद दीन, एक उम्मत उसके बच्चों के बच्चों का पढ़ना है। औरत सीधी हो जाती है, पूरा घर सीधा हो जाता है। औरत माँ के रूप में होती है, बीवी के रूप में होती है, बहन के रूप में होती है, बाकी मामले उनके वो सारे देखने लग जाती है। जिस घर की औरत सही हो गई ना, वहाँ 5-6 साल के अंदर पूरा घर सही हो जाएगा, क्योंकि एक औरत को बिगड़ने में भी बहुत जल्दी लगती है और बनने में भी बहुत जल्दी होती है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि वो हमें बेहतरीन तरीके से इल्म लेने वाला बनाए।